Hare Krishna. ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथस्वामिनिति नामिने. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हम तो दक्षिण भारत की यात्रा में नहीं जा पाए, लेकिन सब भक्तों के अनुभव सुन के पूर्व अनेक वर्षों पूर्व किए हुए यात्राओं का स्मरण थोड़ा थोड़ा सा हो रहा था. वो वृंदावन की यात्राएं जहाँ पे केवल 20-30 लोग होते थे, और बरसाना में घूमना, वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में जाना, फिर रात को हरि निकुंज में आके रहना, फिर वहाँ गरम गरम रोटी सब्जी वगैरह खाना, ब्रजवासी रोटी, और फिर से सुबह सुबह परिक्रमा शुरू करना, और भजन अनेक घंटों तक चलते थे, और कभी कभी बसों में जाना. तो अभी तो 5,000-6,000 लोगों की बात है. पहले 30-40 लोग एक यात्रा में निकलते थे, तो वो एक उस समय ऐसे था कि शायद कोई विचार नहीं कर सकता था इतना कि एक दिन 5,000 भक्त 7,000 भक्त एक साथ निकलेंगे. परंतु महाराज का प्रभाव ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने इतने सारे भक्तों को आकर्षित किया है और करते जा रहे हैं कि उनकी यात्राएं और भी बड़ी 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 होती जा रही है. वैसे उन दिनों में 100 भक्तों की यात्रा तो बहुत बड़ी मानी जाती थी. जब बद्रीनाथ की यात्रा हुई थी 100 लोग हुए थे, हम लोग सोच रहे थे कैसे करेंगे, 100 लोग हैं, सबकी गाड़ी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, कैसे सब होगा करना. तो खैर वो हो गया, बहुत बड़ी चीज हो गई हम सब के लिए. और आजकल उन्होंने इस तरह से भक्तों को प्रशिक्षण दिया है और इस तरह से भक्तों का एक भाव जागृत किया है सेवा के लिए, जो कि हर एक जीव के हृदय में सुप्त रहता है, उसको उन्होंने जागृत किया है. और इस तरह की योजना जो कि 5,000-6,000 लोगों के लिए हो, और वो भी इतनी उत्कृष्ट सेवा, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान भक्तों ने सब दिखाया, सारे नक्शे और सब बहुत सारे चीजें, किताबें, यहाँ तक कि जो प्रवचन हुए थे यात्रा में से निकलने के पहले सबको एक एक किताब दिया गया था, सबको प्रवचन जो भी हुए थे उसके, मतलब इतने जल्दी उन्होंने उसको सुन के, टाइप करके, प्रिंटिंग मुद्रणालय में दे के, छपा के सबको दे भी दिए थे. 6-8 महीने पहले से उनकी तैयारी चल रही थी. कितने 200 से ज्यादा बसें थी, कैसे लोगों की व्यवस्था करना. और महाराज क्या करते हैं, केवल सबको जाके हंस के बात करके आते हैं. वो कोई जाके बस ड्राइवर का कहां गया, क्या है, कैसे क्या कुछ, आराम से सबके साथ बात करना, कीर्तन करना, थोड़े कथा करना बस. और क्या उन्होंने मैनेजमेंट किया, क्या उन्होंने व्यवस्थापन किया, केवल जिस प्रकार से उन्होंने भक्तों को प्रेरणा दी, जिस प्रकार से उन्होंने भक्तों के हृदय में सेवा भावना को जागृत किया, जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व है, उनका चरित्र है, उनके गुण हैं, तो अनेक भक्त इतने शरणागत हैं कि वो बहुत सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं। और इस यात्रा से जितने भी भक्त आए और आज भी थोड़े बहुत जो भी कुछ सुना, इससे यही बात निकलती है कि कैसे भक्तों की सेवा भावना थी और कैसे सारे भक्त उनका देखभाल करते थे। वो क्यों? क्योंकि वो ऊपर से आता है, जो ऊपर से भाव होता है वही नीचे आता है। ऊपर का जो भी भाव है, यदि वो इस प्रकार का एक भाव है, तो नीचे जो भक्त रहते हैं वो भी उसी भाव को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि ऊपर कोई दूसरा भाव हो, जैसे बाहर की दुनिया में देखा जाता है, तो फिर लोगों को वैसे ही होता है, यथा राजा तथा प्रजा। हालांकि वैष्णव, शुद्ध वैष्णव जो होते हैं वो राजा तो नहीं होते, लेकिन राजा से बहुत बढ़कर होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों ने पूछा था, जबकि ऐसा एक वातावरण निर्माण हो गया था कि ये हरे कृष्ण वाले सारे दुनिया को जीत लेंगे और विभिन्न सरकार, राज्य सरकार जो हैं अनेक देशों में, वो घबरा गए थे कि ये हरे कृष्ण वाले इतने जल्दी फैल रहे हैं, ये विस्फोट इनका हो रहा है, तो हमारे सरकार का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा। और उस दिन वो लोग बात कर रहे थे, वो शिष्य उनके, कि 18 दिन में हम सारे दुनिया को जीत सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिन में हुआ था। तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा कि यदि हमारी संख्या बहुत बढ़ जाए भक्तों की, आपको राष्ट्रपति बनने का अवसर मिलेगा, तो हम आपको राष्ट्रपति बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, मैं राष्ट्रपति नहीं बनने वाला हूँ, मैं राष्ट्रपति का गुरु हूँ। तो उसी प्रकार से महाराज राधानाथ महाराज जी तो राजा तो नहीं है, लेकिन सारे सबके गुरु होने के नाते भक्तों के प्रेरणा स्रोत हैं, ज्ञान स्रोत हैं, भाव स्रोत हैं। इसलिए उनके पदचिन्हों में उनके शिष्य सब चलने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए ऐसे एक सुंदर व्यवस्था हो रही है। वैसे वृक्ष की पहचान फलों से होती है, उसी प्रकार से गुरु की पहचान शिष्यों से होती है। और जिस प्रकार से यात्रा की गई, उससे पता चल सकता है कि कैसे प्रशिक्षण और कैसे उदाहरण महाराज ने सबके सामने रखा है। तो ये क्या क्या चीज है जो महाराज ने दिखाया है या दिया है सबको? जब हम ऊपर आ रहे थे तो थोड़े भक्त नीचे थे, टेबल पे सबका स्वागत कर रहे थे, तो ये दो कार्ड उन्होंने दिए मुझे। इसमें एक कार्ड में ऐसे लिखा है, महाराज की सब प्रवचनों से थोड़ा थोड़ा कुछ एक वाक्य वो निकाले हैं, कि वैकुंठ का भाव ये है कि हम अन्यों को हमसे अच्छी प्रगति, ये हमसे श्रेष्ठ पद प्राप्त करने की हम सोचते हैं या इच्छा करते हैं। Mood of Vaikuntha is that we want to see everyone excel more than us. तो ये है भाव। इस भाव के कारण ऐसे चीजें हो सकती हैं, अन्यथा ये संभव नहीं है। आजकल ये देखा जा रहा है कि दुनिया में बहुत खून खराबा और झगड़े, युद्ध आदि हो रहे हैं, और ऐसे शायद नामुमकिन ही लगता है, असंभव लगता है कि 5,000 की संख्या में लोग बड़े प्रेम से एक साथ में रहे, इतने दिन चले, बैठे, उठे, जाएं और कोई शिकायत नहीं करे, बड़े आराम से कष्ट सहन करते हुए भी सभी लोग सेवा करें, तो क्या चीज है? ये तो जादू ही है। यूरोप में शिवराम महाराज जी का एक प्रकल्प है खेती का, उसमें अनेक भक्त लोग रहते हैं, और वो इतना सफल हो चुका है कि उस देश के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से अनेक विद्यार्थी वहां आते हैं पीएचडी करने के लिए, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कैसे ऐसे खेती के समाज में रह के अपना धर्म का पालन करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में रहते हैं, इनके सिद्धांत क्या है, ये लोग इनके उसूल क्या है, इनके मूल्य क्या है, इनका दर्शन क्या है, ये लोग हैं कौन और क्या है ये लोग, कैसे ये लोग ऐसे जी रहे हैं। और उनमें से जो थोड़े बहुत अध्यापक और प्राध्यापक आदि सब आए थे, वो सब वहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर लोग भी आए थे, तो उनमें से थोड़े नास्तिक भी थे। तो उनका निष्कर्ष ये था कि ये प्रकल्प और इस तरह का जीवन और आपस में सब मिलजुल के जो सेवा कर रहे हैं, रह रहे हैं, जी रहे हैं, वो केवल इसलिए है कि भगवान और भगवान के भक्त इसके केंद्र हैं। ये नास्तिक लोग बोल रहे हैं कि हमने अनेक समाज की परीक्षा की है, उनकी जांच की है, हमने उनको इनके बारे में सोच विचार किया है, बाहर के समाज में देखते हैं कि ये संभव नहीं है, परंतु यहाँ पे क्यों संभव है। तो उन्होंने उनका निष्कर्ष ये था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ 5000 लोग एक साथ में रहते हैं, ये कैसे संभव है? ये केवल इसके लिए कि महाराज ने जो उसूल, जो मूल्य, जो सिद्धांत को जोर दिया है अपने उपदेशों में, अपने प्रवचनों में, अपने संवादों में भक्तों के साथ और अपने उदाहरण से, ये सब इन उसूलों का, मूल्यों का, उपदेशों का फल है। परम पूज्य राधानाथ महाराज की खूबी ये है कि वो ऐसे मूल्यों पे और गुणों पे अधिक जोर देते हैं, इसलिए उनके प्रवचनों में अक्सर ये अधिक दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है। जैसे किसी ने और कहा, त्रिनादपि सुने चेना इत्यादि। और ये एक बात जो है कि वैकुंठ का भाव का निर्माण कैसे किया जाए, जब हम ये चाहेंगे कि अन्य जितने भी भक्त हैं वो हमसे आगे बढ़े, वो उनको श्रेय मिले, और ऐसे भाव में, ये तो भौतिक जगत का भाव नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में कौन चाहता है कि दूसरे आदमी को श्रेय दे, दूसरे आदमी हमसे आगे बढ़े, दूसरा आदमी भी प्रगति करे, उसका भी जीवन बहुत अच्छा हो, सुखी हो, ऐसे कौन चाहते हैं दुनिया में। परंतु केवल ये भक्त समाज में संभव है। और महाराज जी हमको घुमा फिरा कर उसी बात में खींच के ले आते हैं कि ये मूल बात है, ये मूल बात है। कभी कभी ऐसे संभव होता है कि हम भक्ति के बाह्य लक्षणों से प्रभावित होकर भक्ति के मूल आंतरिक लक्षणों को भूल जाते हैं। हमें लगता है हम भी कंठी माला पहनते हैं, हम भी शिखा धारण करते हैं, हमारे पास भी धोती कुर्ता है, हाथ में माला लेके हम घूमते हैं, उंगलियों का हम उंगलियों से ऐसे ऐसे घुमाते जाते हैं और मंदिर में भी आते हैं। तो ये सब बाह्य कार्य है। हालांकि बाह्य कार्यों का महत्व अवश्य है और इनको करना चाहिए, फिर भी बात यहाँ समाप्त नहीं होती है। ये बाह्य कार्यों का उद्देश्य है उन आंतरिक मूल्यों को, आंतरिक गुणों को विकसित करना हमारे चेतना में। और इस आंतरिक विकास के ऊपर महाराज बहुत ज्यादा जोर देते हैं, बल्कि हर बार इसी चीज को वो दोहराते हैं। तो महाराज को आपको प्रसन्न करना है तो ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे तो तुरंत उसको पकड़ेंगे और उसको दोहराते रहेंगे। अब जब हम लंदन में थे पिछले साल, तो उस समय महाराज भी वहां पे आए, तो एक बार उन्होंने हमसे भी कुछ कहने के लिए कह दिया, क्योंकि विषय कुछ ऐसा था, विषय था कि भक्तों के बीच में प्रेम कैसे बढ़े। तो वहां के भक्तों ने निवेदन किया था कि इस विषय पे कथा की जाए, तो फिर हमें एक अमेरिकन राष्ट्रपति की बात याद आई, अब्राहम लिंकन। ये शायद आपको हमने पहले भी एक बार कभी सुनाया होगा, और वो बात ये है कि किसी भी समाज में ऐसे सुंदर चीजों की कोई सीमा नहीं है, ये सब ये लोग मिलके काम कर सकते हैं यदि कोई ये परवाह नहीं करे कि श्रेय किसको मिलेगा। तो यदि किसी भी लोगों के समाज में हर आदमी इसकी परवाह नहीं करता है कि मुझे श्रेय मिलना चाहिए या किसको मिलना चाहिए, तो यदि वो केवल अन्यों के लिए कर रहा है कार्य, तो अद्भुत से अद्भुत असीमित मात्रा में चीजों को प्राप्त किया जा सकता है, सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो महाराज को ये बात इतनी पसंद आई कि उसके ऊपर ही वो बोलते गए, और उसके बाद 3 प्रवचन अलग अलग स्थानों में यही विषय वो बोलते रहे, क्योंकि यही उनके हृदय की बात है, ऐसी सब बातें वो पकड़ लेते हैं। और जैसे रुई को फुला देते हैं थोड़ा सा, मेरे पास भी होगा कुछ शायद रुई नहीं, इस योजना से नहीं आए हम, वो हुआ देखिए ऐसा रुई, तो उसको फुलाते, फुला दीजिए, फुलाइए फुलाइए फुलाइए, फुलाते 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 वो बहुत नरम हो जाता है। फिर फुलाने के बाद कितना तो महाराज एक बात को लेते हैं और उसको फुलाते फुलाते फुलाते, और ऐसे उसका विस्तार करते हैं कि बहुत नरम, बहुत सुनने के लिए मुलायम बात हो जाती है। उसी चीज को हम जो एक वाक्य में बोल देंगे, महाराज उसको 2 घंटे उसका विश्लेषण करेंगे, उसका विस्तार में कुछ वर्णन करेंगे, लेकिन घुमा फिरा कर बात वही आती है, लेकिन तरह तरह से उसको मुलायम ढंग से उसको बना देंगे उसी बात को। तो ये महाराज का हृदय है कि वैष्णव गुण, वैष्णव भाव का अनुशीलन कैसे किया जाए। यदि भाव सही हो सब कुछ सही होगा, मंदिर बनेंगे, व्यवस्थापन होगा, और अद्भुत से अद्भुत पुस्तक वितरण होगा, प्रचार होगा, सब कुछ हो जाएगा। और यदि भाव ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, और यदि बाह्य दृष्टि से लग भी रहा है कि कुछ हो रहा है, फिर भी उसके अंदर कुछ प्राण नहीं रहेगा। इसलिए महाराज का विशेष उपदेश यही है कि इन वैष्णव गुणों का कैसे अनुशीलन किया जाए, और इसलिए उनके उपदेशों में, प्रवचनों में हम देखते हैं यही सब चीजें रहती है। हर एक बात उनकी निपुणता ये है कि प्रवचन का विषय जो भी हो उसको इससे संबंध जोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं से उसको संबंध ले आते हैं, और फिर बताते हैं कि कैसे वैष्णव को रहना चाहिए, कैसे भक्त को होना चाहिए, हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, हमारे अंदर गुण कैसे होने चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत अनुसरणीय और श्रवणीय बातें हैं। इनके बारे में यदि ये बहुत गंभीर वाक्य हैं, हम इनके बारे में थोड़ा ज्यादा विचार करते रहेंगे तो ऐसे एक वाक्य हमको बहुत आगे ले जाएगा हमारे भक्ति के जीवन में। जैसे कल्पना कीजिए कि यदि हम हमारे भक्त समाज में भी हर एक भक्त सोचे कि दूसरे का भला हो, दूसरे को श्रेय मिले, दूसरों के अच्छे गुण हम देखें, ऐसे हर एक भक्त सोचता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दुनिया, ये भौतिक दुनिया नहीं रहेगी। और वही बात महाराज बोल रहे हैं, वैकुंठ, वैकुंठ निर्माण हो जाएगा। तो ये सुनने के लिए आसान है, करना इतना आसान नहीं होता, परंतु बार बार सुनने से वो एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ कष्ट लें इस बात को सार्थक करने के लिए। तो महाराज अपने उदाहरण से भी स्वयं दिखाते हैं कि कैसे ये सब चीज होनी चाहिए। महाराज कभी भी अपने लिए कोई श्रेय लेते नहीं है, श्रेय हमेशा अन्यों को देते हैं, और हमेशा अन्यों के प्रगति में, अन्यों के सफलता में बड़े प्रसन्न रहते हैं, अन्यों को कभी भी नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये सब गुण हैं जिनके कारण उन्होंने इतने सारे भक्तों को उनके प्रति आकर्षित किया है। लोग आचरण देखना चाहते हैं, केवल शब्द नहीं। हाँ, शब्दों का महत्व तो है अवश्य, परंतु आचरण जब होता है तो इसका प्रभाव सबके ऊपर होता है, बहुत तीव्रता से प्रभाव हृदय में पड़ जाता है। और इसलिए ये जो चमत्कार हम देख रहे हैं, ऐसे विशाल यात्राएं जा रही हैं, और जो व्यवस्थापन है वो इतनी बढ़िया है कि एक जादू की तरह लगता है ये कि कैसे ये सब हो गया। तो अंग्रेजी में कहावत है, आजकल लोग बोलते हैं इसको MBW बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय वॉकिंग, मतलब चल के व्यवस्थापन करना, केवल चलना घूमना फिरना देखना क्या हो, सबसे बात करना करना, ये उनका मैनेजमेंट। और आजकल बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनमें भी ये लोग करते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं कंपनी में वो केवल घूमते रहते हैं अपने कंपनी में, सबके साथ मिलते हैं, कैसे चल रहा है, कैसे अपनी नजर रखते हैं सब जगह कैसे हो रहा है। तो महाराज भी ऐसे सब वर्णन कर रहे थे भक्त अभी कि सब्जी जहाँ रसोई जहाँ हो रहा है, जहाँ दूसरे सेवाएं हो रही है, वहां सब जाके घूमते रहना फिरते सब भक्तों से मिलना घूमना। तो महाराज ने दिखाया हम सबको कि कैसे भाव हो तो मैनेजमेंट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज ध्यान नहीं देते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, वो भी देते हैं। जब मीटिंग में बैठते हैं तो हर छोटी चीज पर ध्यान उनका रहता है, छोटी से छोटी वस्तु में गहराई में जाके जब तक उस बात का निष्कर्ष नहीं पहुंचता उस बात को छोड़ते नहीं है। फिर निर्णय जब पहुंचता है फिर उसका दूसरी बात, लेकिन इन सारे चीजों के पीछे ये भाव, ये वैष्णव गुण, तो ये सब चीजें हैं। और यदि सारे दुनिया में हम कल्पना कर सकते हैं लोग ऐसे भावना को या ऐसे गुणों को अनुशीलन करने की एक आदर्श अपने जीवन में भी रखें, भले इसको वो प्राप्त कर पा रहे हैं नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम उसको एक आदर्श बनाए अपने जीवन में, तो फिर भी ये सारा जगत वैकुंठ हो जाएगा, जहाँ कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, केवल अन्यों के प्रति प्रेम है, और यह चाहना कि सबकी भलाई हो, सामने वाला भी भला करे। और एक कार्ड किसी हमने आज देखा, उसने महाराज कहते हैं यदि हम उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं जो हमसे घृणा करता है तो हम भी उसके बीमारी के भागीदार बन जाते हैं, फिर उसमें हमें अंतर क्या है? यदि कोई हमसे घृणा करता है तो हमें उससे घृणा क्यों करना चाहिए? एक बार महाराज ने प्रवचन में कहा था, एक प्रवचन नहीं, कोई भक्त अपनी समस्या लेके आए थे कि इसके बीच में कुछ मतभेद था, तो महाराज ने उसे उत्तर दिया कि उसने आपके प्रति बुरा व्यवहार किया है तो ये उसकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। तो वो समझ नहीं पाया भक्त क्या बोल रहे हैं महाराज, मेरी समस्या क्या है, मेरी समस्या है, इतना कष्ट हो रहा है मुझे क्योंकि इस भक्त ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब मेरी समस्या कैसे नहीं है। फिर महाराज ऊपर से बात बताने लगे कि नहीं, यदि कोई गलत काम करता है तो उसको कृष्ण के सामने जवाब देना पड़ता है, वो कृष्ण के साथ जवाब देगा तो आपको क्यों विचलित होना चाहिए। और इतना समझना है कि ये तो कृष्ण की अनुमति के बिना तो नहीं होगा ये सब, तो कृष्ण की अनुमति से ही उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो इसके पीछे भी कृष्ण की कोई इच्छा है, वो आपको भी नम्र बनाना चाहते हैं, आपको भी कोई अच्छे उपदेश देना चाहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात, वो भक्त तो कभी शायद भूलेगा नहीं ऐसे कि मेरे प्रति कोई यदि भला बुरा बोल देता है, कोई बुरा व्यवहार करता है तो वो मेरी समस्या नहीं है, वो उसकी समस्या है। और यदि मैं भी वैसे ही व्यवहार करने लगूं उसके प्रति भले उसके सामने करूं या उसके पीठ के पीछे करूं, तो फिर वो मेरी समस्या बन जाएगी। मेरी समस्या कब शुरू होगी? जब मैं भी वैसे व्यवहार करने लगता हूं जो व्यवहार मुझे कष्ट देता है। बाइबल में भी ऐसे कहावत है ना कि डू अन टू अदर्स एज यू वुड हैव डू अदर्स डू अन टू यू, कि ऐसे अन्यों के साथ व्यवहार करो जैसे आप चाहते हो कि अन्य आपके साथ व्यवहार करें। तो महाराज जी इन्हीं बातों को, सरल सरल बातों को इस तरह से मोड़ के बता देते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल स्तंभ रह जाता है, निरुत्तर रह जाए कि क्या है। तो ऐसे सूक्ष्म बातें हैं। तो जप करना ये तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन इस भक्ति मार्ग में ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बहुत सारी हैं। देखने में भक्ति बहुत सरल है और एक दृष्टि से है भी यदि हम सरल रहें, परंतु इतने जन्मों के भौतिक सृष्टि से संपर्क करने के कारण हम सरल रहे नहीं हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ पड़ा है, तो उसको ऐसे ऐसे सीधा करना है, निकालना है, सब सीधा सीधा करके गांठ है सब निकालना है, उसको मुलायम नरम बनाना है। तो महाराज जी अपने उपदेशों से ऐसे कर रहे हैं। और इस बार उनकी षष्ठी पूर्ति है, 60 साल के हुए और समय पता नहीं चलता कैसे बीत गया। और अनेक वर्षों से पहले जब वो आए थे और उनका स्वागत अच्छी तरह से नहीं हुआ जब वो पहले चौपाटी मंदिर में आए थे, क्योंकि वहाँ वातावरण कुछ और ही था। और लेकिन उस जमाने से कैसे क्या एक चमत्कार हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ। केवल वो टिके रहे, उन्होंने अपने वैष्णवता को कभी त्यागा नहीं, वैष्णव गुणों के ऊपर जोर देना कभी रुका नहीं, अपने जीवन में भी और अन्यों के जीवन में भी। और ये एक निश्चित सूत्र है सफलता के लिए। भले हमारे जीवन में कष्ट आए या न आए, लेकिन हमारे वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार यदि हम बस अटल होकर चलते रहें आगे, भले आज कुछ अपमान हो, कुछ कष्ट हो, कुछ समस्या हो, हम बस करते रहे करते रहें, अंत में सफलता निश्चित है। और एक कार्ड किसी ने मुझे दिखाया आज कि सफलता इसमें है कि कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो। सफलता केवल इसमें नहीं है कि केवल हम बड़े बड़े मंदिर निर्माण करें या हम बहुत सारे पुस्तकों को वितरित करें, ये अच्छी बातें हैं, इसलिए भी प्रचार इनकी भी आवश्यकता है, परंतु ये मूल बात नहीं है। मूल बात यह है कि भगवान कृष्ण हमसे प्रसन्न हो, पूर्व आचार्य हमसे प्रसन्न हो, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आज उनके षष्ठी पूर्ति पर, उनके 60वें जन्म दिवस के ऊपर हम ये प्रेरणा कर सकते, हम ये विचार कर सकते हैं कि उनके गुणों का भी हम गुणगान तो करें, साथ साथ हमारे जीवन में भी उनको लाने का प्रयास हम करें, तब ऐसे व्यास पूजा महोत्सव आदि सफल होंगे। और वैसे बंबई में तो बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर व्यास पूजा परसों मनाई जा रही है, हो सकता है आप में से कई भक्त आ भी रहे हैं वहां पे। श्रील राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।